Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sudha Mane Amrit. Amrit hai antame jiski. Aise kona Vedanta Vidya. वेदांत विद्या को पढ़ोगे तुम क्या बन जाओगे? सुधा की प्राप्त करोगे. सुधा अमृतम सुधांतम अमृतम यानी बात मृत्यु से जन्म मृत्यु के बाद सुधा समुद्र मंथन से भी सुधा निकला कि नहीं निकला? वो अमृत पान करके भी होता है, अमृत होता है. अमृतम क्षीरभोजनम कहते अमृत क्या आगे क्षीर भोजन क्षीर क्षीर समझते हैं ना. सिंधी लोग दूध को क्षीर कहते. क्षीरभोजनम अमृतम क्षीरभोजनम दूध पान करो अमर हो जाओगे. वो तो चावल ढाल करके बनाओगे तो उसका क्षीर कहते हैं, परंतु ऐसे दूध को क्षीर कहते. खीर नीरक क्षीर विवेक हंस जो है ना नीरक क्षीर का विवेक करते हैं. हंस परमहंस कुटिशक बहुधक चार प्रकार के संत होता है ना, तो हंस नीरक क्षीर विवेक करता है. हंस होते हैं ना का जल और दूध मिला करके हंस के सामने रख दो तो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसा कहते हैं. ऐसे दूध और जड़ चेतन गुण दोषमय विषय किन्नी करता. तुलसीदास जी लिखते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता हंस गुण कह पारिहरी परिहरी बार विकास. देखा जड़ चेतन दोनों मिलाया, गुण दोष दोनों मिलाया, दोनों को मिला करके विश्व किन्न करता ये संसार बनाया परमात्मा ने. देखो एक सोना से आभूषण नहीं बनता है, एक पीतल से भी नहीं बनाते, दोनों मिला करके आभूषण बनाते. जड़ चेतन की जो है ना ग्रंथि सृष्टि की आदि से है. तुम क्या करोगे? अभी दोष गुण मिला करके संसार बनाया, जड़ चेतन मिला करके संसार बनाया. अगर जड़ चेतन नहीं होता तुम चलते हो? ये शरीर जड़ है, चेतन तुम हो, ये दोनों मिला करके विश्व का व्यवहार चल रहा है. संसार का व्यवहार कैसे चल रहा है? जड़ चेतन मिला करके. आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है. जड़ के अंदर चेतन भर दिया तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत, तो सृष्टि करके परमात्मा घर के अंदर प्रविष्ट हो गया. तब चल पड़ा गाड़ी अनवे घड़ी बनाया उस पर सेल नहीं डालो तो गाड़ी बनाया हवाई जहाज बनाया जब अगर जो ड्राइवर पायलट ना बैठे तो संसार में जड़ चेतन का संबंध है. जड़ चेतन दोनों मिल करके संसार चलते हैं. ऐसे स्त्री पुरुष मिलकर के संसार चलाते हैं. अनि बात है दोनों क्या है, एक एक परिवार के दो मल्ला है, एक आगे एक पीछे रहता है, परिवार चलता है, नहीं तो सब परिवार चले नहीं. अनि बात ये जड़ और चेतन दोनों मिलकर के संसार बनाता है. संसार का निर्माण उभयात्मक है, केवल जड़ से भी नहीं चलेगा, केवल चेतन से भी संसार नहीं चलेगा. जड़ चेतन गुण दोषमय. अभी संसार में कोई भी व्यक्ति निर्गुण नहीं है और कोई भी व्यक्ति सदोष नहीं है. हमेशा कोई भी व्यक्ति हमेशा दोषी दोष है इसमें, ऐसा आप नहीं कह सकते हो. और कोई व्यक्ति निर्गुण ही है इसमें कोई गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं है. गुण और दोष दोनों है. किसी में गुण ज्यादा है, किसी में गुण कम है, किसी में दोष ज्यादा है, किसी में कम है। दोष गुण तो सब में रहेगा, है नहीं बात? तो हंस गुण कहा ही, हंस जो महात्मा होते हैं ना, क्या करता है? गुण का ग्रहण करता है, दोष को छोड़ देता है। आपका हमारे अंदर दोष है तो आप हंस है, महात्मा है, तो हमारे दोष को छोड़ करके हमारे अंदर जैसे कोई गुण दिखता आपको तो गुण ग्रहण है नहीं बात। वो एक महात्मा जा रहा था रास्ता में, तो वहां देखता है कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, कुत्ता मरा पड़ा है, तो महात्मा ने उसकी तरफ देखा, चेला से बोला, देख एक एक कुत्ता ने कितना पुण्य किया, इसका दांत कैसा चमक रहा है, दांत चमक रहा है। तो उन्होंने तो गुण का ग्रहण किया, चेला कहते इसके बदू चलो आगे बढ़ो, सही है। तो उसने तो वहां गुण देखा, उसने पुण्य किया, दांत चमक रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा आदमी होता है ना, वो गुणग्राही होता है, गुण को ग्रहण करता है, दूसरा को दोष को ग्रहण नहीं करता है। कितना भी दोषी हो उसके अंदर रहेगा, क्यों हम दोष ग्रहण करने जाएंगे ना, हमको दोषी होना पड़ेगा। दोषी हुए बिना दोष ग्रहण नहीं होता, एक बात याद रखना। दोषाकार वृत्ति आपके चित्त में होगा तब आप दोष देखोगे, नहीं तो देखोगे कैसे? गुलाब का फूल गुलाब आकार जो है ना, गुलाबी रंग है, तो आपका चित्तवृत्ति बनेगा तभी आप गुलाब का फूल देखोगे। वृत्ति बैठने चाहिए ना पहले, हाँ? तो वृत्ति से बदल लेगा तब ना वो गुणग्राही होगा। दोषग्राही गुणग्राही दोनों वृत्ति से होती है। तो सज्जन दोष को देखता नहीं, गुण को देखता है, और दुर्जन गुण को नहीं देखता, दोष को देखता है। बस इतना ही अंतर है। मृजादिना मलिनकृता पूर्वम पत्सा सुधांतम सुधोतम इति अस्मिन् अर्थे सुधांतम आने बात। सुधोतम आने अच्छी तरह से धो डाला, आने बात। तो क्या हो गया? सुवर्ण चमक गया है, उसका उसका मलिनता निकाल दिया। ऐसे वस्त्र भी सुधोत हो गया, वह बरगिला के पंखा के जैसे चल रहा है, बगुला के पंखे चलता है। वो हमारे सिंधी लोग जो होते हैं ना, कपड़ा पहनते देखना, ये इतना बगुला के पंखा से सफेद होता है। कहीं भी जाते हैं ना, मरण नरण में जाते हैं ना, ऐसे भी बहुत से हैं, वो सफेद सफेद वस्त्र ही पहनते ज्यादा, बुढ़ा बुढ़ा। अग्नियादि ना विमली कृतम, आगे बतला दिया, देखो अग्नियादि ना विमली कृतम, अग्नि आदि के द्वारा क्या कर दिया? विमले कृतम, हाँ, विगता मलम, हाँ, जिसके अंदर से मल को धो डाला, सुधोत कर दिया, शुभ्र कर दिया, स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया, उसका नाम है विमले कृतम। जैसे तुम्हारे अंतकरण को तुम हम कैसे करोगे? विमले कृतम, माल विक्षेप आवरण अनादिकाल से आया है, इस माल विक्षेप आवरण रूपी दोषों को हटाए बिना अंतकरण विमलीकृत नहीं होता है। हमारे अंतकरण में जो दोष आया है ना, राग द्वेष ईर्ष्या हर्ष शोक शोक दुख मान अपमान आदि बात, ये सब जो दोष आए, ये दोषों को हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? दोष मिटाना पड़ेगा कि नहीं? दोष जब मिटेगा नहीं तो विमली कृत कैसे होगा? निर्मल मन जो सोम ही पावा कैसे बोलोगे? कहे बोलते ना संत लोग बतलाते कि नहीं, निर्मल मन जो सोम ही पावा सल कपट मही सपन ही नहीं भावा, सपना में भी नहीं देखता जो है मले नांत करने वाला। मतलब कहने का, जब तुम जागृत में मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, सपने की बात छोड़ दो, सपना में भगवान का देखा कि नहीं देखा कौन जानता है, बोल देता हमको सपना में भगवान आया, ऐसा भी बोलता है बहुत से आदमी। भगवान का दर्शन हुआ भगवान में, भगवान ऐसा है वैसा है बोलता है ना बहुत से आदमी। तो कहने का मतलब अंतकरण जब शुद्ध होगा ना, अशुद्ध अंतकरण करने का साधन सबके अलग अलग है, याद रखना। भक्तों का साधन अलग है, योगियों का साधन अलग, ज्ञानियों का साधन अलग है, कर्मियों का साधन अलग है। सामान्य साधन, सामान्य सबके लिए साधन एक साधन, निष्काम भाव से कर्म करो। उसके लिए है ना दान पुण्य का, दान पुण्य और तप, यज्ञदानम तप कर्म पावनानि मनीषिणम। गीता में भगवान ने बताया यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये तीन साधन सबके लिए। अर्जुन ने पूछा था ना संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषुधन। हाँ, त्याग का संन्यास का महत्व हम जानना चाहते अलग अलग करके। भगवान ने क्या बोला, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तप ये तीन साधन मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए गृहस्थ आश्रम में जब तक है। संन्यास आश्रम में जाओगे तो बात दूसरी है, वहां साधन अलग है। गृहस्थ आश्रम का साधन अलग है, ब्रह्मचर्य का अलग है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे तो वहां का साधन अलग है, यानी वहां तो गायत्री जप करो, हवन करो, यज्ञ करो, तपस्या करो। गृहस्थ आश्रम में आया यह साधन अलग हो गया, ब्रह्म या वानप्रस्थ में जाएंगे साधन अलग हो जाएगा। क्यों, एक आश्रम का साधन दूसरा आश्रम में काम में नहीं आता है। एक आश्रम का जो साधन है, अभी आप गृहस्थ आश्रम में है तो आप जो भी वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, वहां पर जो गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन करने शुरू कर दिया, हाँ तो आपका साधन होगा, तो आपका भ्रष्ट साधक बतलाएगा। वानप्रस्थ में जो साधन है वो संन्यास आश्रम में जाएंगे तो काम चलेगा। क्यों, बोला हम तो अभी अभी करके आया, यहाँ आया, हम यहाँ भी वही का साधन करेंगे तो नहीं चलेगा। तो चारों आश्रम में अधिकारी भिन्न भिन्न होने से साधन में भिन्नता आ जाती है। अधिकारी भिन्न होने से साधन में भिन्नता आ जाती है, एक ही साधन तीनों आश्रम में चारों आश्रम में चलता नहीं है। नहीं बात, जैसे देखो अभी आप एक देश के नागरिक है, समझो देश के भारत का नागरिक है। अभी लड़ाई चालू हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चालू हो गई, तो आप जब भी कहोगे सेना जो है ना शस्त्र लेकर के सीमा पर खड़ा हुआ है, दुश्मन से लड़ रहा है, तो हम भी देश के नागरिक होने के कारण हम भी शस्त्र लेकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, तो आपको लड़ने देगा सरकार? क्यों, आपको सरकार ने अधिकार दिया लड़ने का है? आपको लड़ने का अधिकार नहीं दिया, शस्त्र पकड़ते ही आपको गिरफ्तार करेगा, तुम आतंकवादी हो, दुश्मन हो। और सरकार ने जिसको साधन दिया तो अधिकार दिया तो कोई लड़ सकता है। ऐसे यज्ञ दाग आदि करने का अधिकार जो वैदिक सिद्धांत के अनुसार जिसको दिया गया है वही करेगा। आपको जो साधन दिया गृहस्थ आश्रम में आप उसका पालन करो, वही आपके लिए साधन है। आप जो संन्यास आश्रम में चला गया तो आपके लिए जो साधन उस आश्रम के प्रणव जप करने के लिए, संन्यास मंत्र जप करने के लिए जो अधिकार दिया गया है वो आपके लिए साधन है। तो भिन्न भिन्न अधिकारी भिन्न भिन्न आश्रम भिन्न भिन्न अधिकारी भिन्न भिन्न साधन, एक साधन सब में नहीं चलता है। अग्नि आदि न विमलीकृत तेजोमयम भ्राजते ही, अग्नि आदि के द्वारा विमलीकृत हुआ माने स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया सुवर्ण, तो फिर क्या होगा, चमकेगा। भ्रातते माने चमकता है, तेजमय होकर के चमकेगा। वाह देखो कितना चमकदार आभूषण है। दुकानदार चमका करके रखते हैं ना दुकान में आभूषणों को, तो ऐसे चमकता थोड़ी है। वो बेचारे जो है ना कितना पिटाई खाया सुनार का, सुनार जो पीटते 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 कितना बार आग में डालकर फूंकते फूंकते सुनार का जो है ना सत्यानाश कर दिया कि नहीं। शुद्धि ऐसे शुद्धिकरण यहां भी है, साधक के जीवन में भी शुद्धिकरण होता है। आनी बात शुद्धिकरण किए बिना वो आत्मा चमकेगा नहीं, भीतर बैठा हुआ परमात्मा का साक्षात्कार होगा नहीं। यहां भी शुद्धिकरण बार 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 वेदांत वाक्यों का श्रवण करो। आनी बात बार बार श्रुतम हरन्ति पापानि, बार बार सुनते सुनते पाप नाश होता है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नारायणाम क्षीण पापानाम। देखो शास्त्र में लिखा है जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी, तप ज्ञान और नारायणाम क्षीण पापानाम, जिन मनुष्यों का पाप क्षीण हो गया तो उनका क्या होता है, कृष्णे भक्ति प्रजायते, वह भगवान में भक्ति पैदा होती है। ऐसे भक्ति नहीं आती, हम भक्ति करते बड़ा भक्त बनते हंसते रोते गाते परंतु भक्त बनने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। अनंत जन्मों का साधन संपन्न होगा तब जाना क्षीण पाप होगा, तब जाकर के भक्ति पैदा होगी। अन्य बात इसीलिए श्रवण प्रधान, वेदांत में भी श्रवण प्रधान, बार बार श्रवण करो ये साधन है। बार बार श्रवण करो, बार बार मनन करो, फिर जो है ना आत्मा साक्षात करते। श्रवण मनन तो साधन है, क्यों श्रवण मनन किए बिना विवेक कहां से होगा। पहला साधन क्या है, श्रवण। श्रवण करोगे तब मालूम पड़ेगा नित्य वस्तु क्या, अनित्य वस्तु क्या, सत क्या, असत क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, अनिवार्य विनाशी क्या, अविनाशी क्या, जीव क्या, जगत क्या, ब्रह्म क्या, कहां से सुनोगे। ये सुनाने वाला भी चाहिए, आने वाला और सुनने के लिए जिज्ञासा भी होने चाहिए। आने बात जीव क्या, जगत क्या, ब्रह्म क्या है, कभी सुनेगा वो जो निश्चित जो कथा होती है ना, जो कथा होती है भजन होता है फलाना होता है, या जीव जगत का विषय में विचार होता है कभी, वेदांत वाक्यों का श्रवण होता का भी कठिन लगता है। परंतु समझ लेना जहां जो वस्तु कठिन से प्राप्त किया जाता है उसका कीमत होता है, जो आसान से मिलता है ना उसका कीमत नहीं होता है, और जो कीमत कठिनाई से प्राप्त किया उसको संभाल करके रखता है। समझ के नहीं, उसको संभाल करके रखता है, उसको जैसे तैसे नष्ट होने नहीं देता है। तो वेदांत वाक्यों का श्रवण, समझ गए नहीं, श्रवण पहले साधन है। श्रवण किए बिना तो मनन नहीं करोगे, विवेक कहां से होगा, विवेक कहां से होगा। बिनु सत्संग से विवेक न हो राम कृपा बिने सुलभ न सही, तुलसीदास जी बोला कि नहीं, जब तक तुम सत्संग करोगे नहीं तो विवेक होने वाला नहीं। बिनु सत्संग से विवेक न हो, और विवेक सत्संग कब मिलेगा, भगवान की कृपा के सिवा होगा। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने लिखा सत्संगते निस्संगतम, निस्संगते निश्चलतम, निश्चलते निर्महितम, निर्महित्य जीवन मुक्ति ही। ऐसा परंपरा है, याद रखना। सत्संग करते करते सत्संग करोगे तो क्या होगा, संसार के तरफ से तुम असंग हो जाओगे, असंग हो जाओगे, निस्संग हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे। असक्ति अनभिसंगा पुत्र द्वारा गृहादि सुहाएगी नहीं, पुत्र द्वारा गृहादि में जो आसक्ति है, आसक्ति कम हो जाएगी, आसक्ति निकल जाएगा। समझे कि नहीं? सत्संगते निस्संगते निश्चल हो जाओगे, निश्चलते निर्मल निर्मोहितम, सत्संगते निस्संगता निस्संगते निर्मोहितम, हाँ निर्मोहितम मोहर हट जाएगा, निर्मोहित निश्चलतम, जब मोह चला गया तो निश्चलता जीवन में आ गया, निश्चलते जीवन मुक्ति। हाँ निश्चल हो गया माने संसार के विषय में चंचलता नहीं रहेगी ना, विषय में आसक्ति नहीं रहेगी। फिर कल विचार कर, हरि ओम पूर्ण मद पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।